कि नहीं समस्त विश्व के बहुत ही प्रकांड विद्वान और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जगत के एक बहुत ही उज्जवल और आख्यात नेता महामंडलेश्वर स्वामी गिरिजी महाराज यहाँ फिजी में जो आकर आया करते थे प्रसन्न प्रसारित हुए हैं और ये हमारे सौभाग्य है कि वो पृष्ठवाणी पर आज दिन में प्रसार रहे हैं। और स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शिवेंद्रपुरी जी महाराज का आगमन पृष्ठवाणी पर लगभग 10 या 11 बजे के बीच में होगा और इस अवसर पर वे हमारे मध्य रहकर छोटा सा वक्तव्य देंगे और इसके साथ साथ दिवाली पर प्रकाश डालेंगे और इसके अलावा जो लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं दिवाली के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक जीवन के उपलक्ष्य में या भारतीय धर्म हिंदू संस्कृति वेदांत संस्कृति के बारे में तो वे 71 पर रिंग करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसा अवसर दुर्लभ अवसर बहुत कम होता है कि एक महामंडलेश्वर कहीं पधारे क्योंकि महामंडलेश्वर जो है वो वैसे ही कम है और जो भारत में शंकराचार्य हैं शंकराचार्य जब चुने जाते हैं तो वे महामंडलेश्वर में से ही चुने जाते हैं और महामंडलेश्वर का विदेश में प्रवेश करना या आना दुर्लभ बात है और ये ब्रिस्बेन वासियों के लिए बहुत ही जैसे मैंने कहा सौभाग्य की बात है। महामंडलेश्वर स्वामी शिवेंद्रपुरी जी महाराज जो कि भोजपुरी और अवधी क्षेत्र के ही हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारी भाषा से परिचित है और वे प्रसिद्ध वकील भी रह चुके हैं। आज आ रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका भरपूर स्वागत करें और जो भी कुछ धर्म के बारे में संशय हो उनसे हम पूछ सकते हैं और अपने भक्ति के बारे में किसकी उपासना करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए दिवाली कैसे मनानी चाहिए इसकी विधि क्या है जो भी कुछ आपके कुछ प्रश्न पर संशय है तो आप वैश्वानी पर आज 10:30 के करीब रजिस्टर करिए और मैं साथ में रहूँगा उनसे आप जो भी कुछ अपना संशय है उसका निवारण।
अच्छा जी तो स्वामी जी का कहीं प्रवचन वगैरह भी होगा
मुझे बैंक में मेरे ख्याल से मेरे पास में आज वो रहेंगे अभी पूरा विवरण मुझे नहीं मालूम कि कहाँ रहेंगे
जी।
लेकिन शायद शारदा वाजपेयी जी आएंगे साथ में तो वो बता सकते हैं क्योंकि वो कल ही निकल से बता रहे और वो कल फिर बुधवार को चले जाएंगे तो अब मालूम नहीं है कि आज कहाँ पर वे रहेंगे लेकिन इतना मालूम है कि मेरे पास है।
अच्छा
रहेंगे तो आ जाएंगे तो बताएंगे कि कहाँ रहेंगे और वे इस तरह के जैसे राम कथा है और भागवत कथा है इस तरह के प्रवचन या कथाएं नहीं करते हैं उनका जो प्रवचन होता है उनके जो जो विचार होते हैं वो सीधे जीवन पर आज जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए आज के संदर्भ में ईश्वर भक्ति क्या है और किस प्रकार से अपने आप को ढालना चाहिए इस पर वे ज्यादा प्रकाश करते हैं व्यवहारिक बातें बताते हैं कि किस तरह से शिष्टाचार आचार संस्कृति व्यवहार की बातें हैं वो शास्त्रों के अनुकूल होनी चाहिए और आज लागू करनी चाहिए तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत ही सरल स्वभाव ऐसे बताते हैं और सुनकर अगर हम बोले तो हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और रेडियो पर बार बार वो आए हैं और जब वो आते हैं जो बताते हैं अगर आप उनसे एक भी बात सीख लें तो आप जिंदगी को संवार
जी हाँ जो आप कह रहे थे जैसे कि रामायण के द्वारा नवदा भक्ति में भी यही कहा गया है कि प्रथम भक्ति कर संतन के संगा ना
जी हाँ, ओ, हाँ।
तो वो कोई बात झूठ नहीं है हमारे ग्रंथ की तो जो आप कह रहे हैं
वो चलते फिरते जंगल तीर्थ आ गए हैं उसको, वो चलते फिरते तीर्थ हर एक को एक सुलभ नहीं होता कि आप तीर्थ स्थलों में जाकर भारत में कहीं पर जाकर उसका दर्शन करें, लेकिन जो संत और महात्मा आया करते हैं वो चलते फिरते तीर्थ माने जाते हैं, उसका दर्शन करना, उसके चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना ही बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है, क्योंकि उनसे जीवन भर तपस्या करके जो तप और जो नॉलेज है, जो विद्या है वो इकट्ठा किया है, संचय किया है, और ये हमारी हम तो सौभाग्यशाली होते हैं कि इनके हम स्पर्श में आ सकते।
अच्छा जी, तो हम श्रोताओं को एक
बड़ा ही प्रशस्त गुण संपन्न माना गया है, तो मैं पहले तो आ नहीं सका, चूंकि पहले के 15 दिन तक हम अपने हरिद्वार के आश्रम में कार्यक्रम दे रहे थे। उसके बाद उन लोगों को मैंने कहा कि भाई अच्छा होगा कि जो अंतिम दिन है, इस समापन दिन जो है इस महीने का, अधिक मास का, उसमें हम क्यों नहीं चलेंगे विश्व के अंतिम छोर पर बैठ करके विश्वनाथ की आराधना की जाए। तो ये कार्यक्रम बहुत पहले ही निश्चित हो चुका था, क्योंकि विगत वर्ष भी हम लोग गए थे इंद्रकागिल में और वहां हम लोगों ने पूजा की, उसी समय ये निश्चित हो गया था कि वो अगले वर्ष भी आकर के हम पूजा करेंगे। तो इसी उद्देश्य को रख करके वहां हम लोग गए, फिर काफी लोग न्यूजीलैंड से गए कार से, कुछ लोग वायु मार्ग से भी आए, और वहां बैठ करके हम लोगों ने पूरे विश्व की शांति के लिए जो आज की आवश्यकता है, तेज जी आप तो जानते हैं कि विश्व के पास इस समय आर्थिक भौतिक बाद की सारी चीजें, लेकिन अध्यात्म बाद की न्यूनता का ही ये प्रतिफल है कि हम उसको भोग नहीं सकते ठीक से। आज चौराहे पर आदमी खड़ा होकर के, दिग्भ्रमित होकर के, वो सोच रहा है कि किस मार्ग से जाएं, किधर जाएं, जिधर वो देखता है उधर यही देखता है कि या तो माइंस बिछी होगी या तो बरूद का ढेर।
कितना सच है,
विश्व इससे सुशंकित है। अध्यात्म के बारे में कोई नहीं सोचता कि अगर शांति नहीं है तो सुख भी हमको शांति दे नहीं सकता है। सुख को भी ठीक से भोगने के लिए शांत मन का होना बड़ा आवश्यक है। आदमी भयभीत है, डरा हुआ है, चिंतित है, ऐसी स्थिति में अगर दुनिया भर का ईश्वर भी उसके सामने रख दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और इस अशांति का जो पूरे विश्व में इस समय है, पूरे विश्व के लोग अशांत है, कोई अपने लिए तो किसी कोई दूसरों को देख करके, इस अशांति से कोई बचा नहीं है इस समय। ये छूट की बीमारी के तरीके सारे विश्व को दुखित कर रही है।
और कहा इंसान समझता है कि भौतिक संपत्ति ही शांति का साधन है।
अब देख लीजिए इससे बढ़िया और प्रमाण क्या हो सकता है कि भौतिकता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ अमेरिका आज असहाय है, पूरे विश्व से सहायता चाह रहा है। बताइए आप,
समस्त विश्व से
कल्पना नहीं कर सकता, प्रत्येक राष्ट्र से कह रहा है कि भाई इस टेररिज्म को हटाया जाए, नाश किया जाए इसका। टेररिज्म का मतलब होता है भय देने वाली शक्तियां, विनाशकारी शक्तियां, अशांति फैलाने वाली शक्तियां। कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई राष्ट्र विशेष नहीं, कोई जात विशेष नहीं, इनकी कोई जात विशेष नहीं होती है और इनका कोई राष्ट्र विशेष नहीं होता है। अब और ऐसे व्यक्तियों व्यक्ति तो वही है जो पूरे पूरे मानव समाज में है, वही उनका खून, वही पंच इंद्रियां, वही पंच कर्म इंद्रियां, वही मन प्राण बुद्धि सब कुछ वही तो है, लेकिन उनकी भावनाएं। अब ये पूरे विश्व से जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं, जो दूसरों को दुख देने वाली भावनाएं हैं, इनको तो केवल ईश्वर ही मिटा सकता है। व्यक्ति बन से क्या मिटा सकता है, गुरु से क्या मिटा सकता है, पैसे से क्या मिटाया जा सकता है। एक आदमी को यही प्रिय लग रहा है और हर आदमी इष्ट के अनुसार काम करता है, इष्ट का तो प्यारी चीज को। अब किसी को यही प्रिय है कि लड़ाई झगड़ा हो, तो उसकी इस प्रियता को मिटाने के लिए, उसकी इस प्रियता को छुड़ाने के लिए तो केवल एक ही समर्थ है और वो है ईश्वर। आज ईश्वर की उपासना की, ईश्वर के स्मरण की, ईश्वर के पूजन की, ईश्वर के ध्यान की जितनी आवश्यकता है मैं समझता हूं कि इतनी पहले कभी नहीं थी। जबकि लोगों ने यह सोचा कि हम भौतिकता में अगर संपन्न हो जाएंगे तो ईश्वर की हमको कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये भूल गए। अगर शांत मन नहीं है तो भौतिकता सुख नहीं दे सकती, आज इसका प्रमाण है।
समझिए,
इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने भगवान शंकर की उपासना की और यही संकल्प किया गया कि विश्व का मानव जो अशांत है, भयभीत है, दुखी है, हे भगवान जिससे दुखी है उसकी वृत्ति को ठीक करो।
अच्छा।
उसके मन में शांति के प्रति सद्भावना जागृत करो, वो मानवता के प्रति संवेदनशील हो, करुणा प्रिय हो, हिंसा को त्याग दे। तो इसी उद्देश्य को रख करके और मनमास का अंतिम दिन वहां ही उत्तम माना गया है, तो वहां बैठ करके बड़े प्यार से विश्व की इस स्थिति के प्रति हम लोग चिंतित थे और बड़े कारुणिक मन से हम लोगों ने बड़े एक प्रार्थना के सद्भाव को रख करके हम लोगों ने भगवान का पूजन किया और बड़े ही अच्छे ढंग से हुआ। तो वो पूजन करके फिर हम आए ऑकलैंड और ऑकलैंड से कल ही आपके इस ब्रिस्बेन शहर में पहुंचे।
धन्यवाद। इतनी अनुपम भावनाएं केवल भारतीय संस्कृति में ही हो सकती है ऐसा लगता
है। जरूर, और हमारी भावनाएं इसलिए हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है या निर्मित की जाती है, उनमें इसी तरीके की प्रार्थना है। उसमें प्रार्थना किसी हिंदू के लिए नहीं की गई है, वेद इतना निष्पक्ष है कि किसी को भी उसकी बात मनवाई जा सकती है, प्रिय लगेगी। देखिए वेद में प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वेद तो भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी क्रिश्चियन की बात नहीं करता है। सभी ये सब तो हम लोगों ने बनाए, ये सारी चीजें हमारी हैं, इनका ड्यू डेट है ना, ये बनाए जाते हैं जो सनातनी है। मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, किसी भी धर्म का बात क्यों न हो, लेकिन वो पैदा होता ही सनातनी है। सनातन धर्म जो है वो ईश्वर का है और ईश्वर मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू नहीं, ईश्वर तो केवल ईश्वर है। ईश्वर की कोई जात नहीं है, ईश्वर की कोई जात नहीं है और ईश्वर के कोई संबंधी नहीं है, ईश्वर के सभी है। ईश्वर सभी रूपों में है, सभी रूपों में है। मनुष्य मात्र को ईश्वर के रूप में पूजा जा सकता है। देखिए हमारे यहां पर तो कितनी अच्छी मेथोलॉजी है और कितनी प्यारी चीज है हमारे यहां कि हम पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, हम ही बनाते हैं, उस पत्थर में भगवान को उत्कीर्ण करते हैं और फिर उसके बाद उसको ले जाके मंदिर में स्थापित करते हैं और उसको पूजते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये संकेत देता है कि हम अपनी बनाई हुई पत्थर की मूर्ति में भगवान अगर पा सकते हैं तो भगवान की बनाई हुई जो मूर्ति है उसमें ईश्वर क्यों नहीं मिल सकता है। उसमें तो भेद नहीं है कि ये क्रिश्चियन है, ये ईश्वर है, मुसलमान है, ये हिंदू है, क्या भेद है। ये
बहुत बड़ी बात है।
इतना बड़ा, इतना सहज और इतना दुर्लभ आदर्श कहाँ है, कौन पढ़ता है इस बात को। लोग कहते हैं ये नहीं पूजना चाहिए, वो नहीं पूजना चाहिए। अभी कुंभ में एक क्रिश्चियन महोदय ने मेरे से पूछा, मूर्तियां क्यों पूजन करते हैं, मूर्तियों में तो कुछ है नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मूर्तियों में तो कुछ नहीं है, मूर्तियों में क्या है, हम भी जानते हैं मूर्तियों में कुछ नहीं है, मूर्तियां एक आलंबन है, फोटो में कुछ नहीं है, माता पिता की फोटो रखते हैं उसमें कुछ नहीं है, फोटो से कोई गुण का पता नहीं चलता है, फोटो से स्वभाव का पता नहीं चलता है, फोटो से फोटो देखने के बाद रिस्पेक्ट नहीं आती है, एक आदर की बात नहीं आती है। ये तो सब सही बात है लेकिन उस आदर का एक आधार है, श्रद्धा का आधार है, निष्ठा का आधार है, सदाचार का आधार है। बिना आधार के मूल वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे घड़ी समय नहीं है लेकिन बिना घड़ी के समय का ज्ञान नहीं होगा। तेज जी, मैंने उसको कहा कि जो घड़ी कोई समय मान ली वो बेवकूफ है। ईश्वर के अवतरण का, ईश्वर के अनुभव का एक साधन है, हम भी जानते हैं, हमने ही बनाया है, हर आदमी जानता है ये मूर्ति किसी आदमी की बनाई हुई है, लेकिन जब उसको हम प्रतिष्ठित कर देते हैं उसमें ईश्वर की सद्भावना कर लेते हैं तो नमन का एक साधन हो गया। नमन करने के लिए एक साधन होना चाहिए ना। माता पिता को नमन करते हैं, बड़ों को नमन करते हैं, जो उम्र से बड़े हैं, जो ज्ञान से बड़े हैं, ये हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है। अभिमान करके क्या पाओगे? क्या अभिमान का फल ही तो है कि अमेरिका जल रहा है, तालिबान जल रहा है, पाकिस्तान चिंता में अनुद्रित हो रहा है, हिंदुस्तान के चिंता में अनुद्रित नहीं हो रहा है? जो बुद्धिमान आदमी नहीं सोचता है, बुद्धिमान आदमी सोचता है, मूर्ख को इतनी चिंता नहीं होती। लेकिन लिखा है कि सर्वम दुखम विवेक न, विवेकी जो होता है वो ज्यादा चिंतित होता है, भाई लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सोचता है अच्छी बात को। तो ये साधन अगर है हमारे जीवन में तो इसे हमको शांति मिलती है, एक भरोसा मिलता है, मन शक्तिशाली होता है कि ईश्वर हमारे साथ है। और जो शक्तिशाली मन होता है वही सब कुछ कर सकता है, जो शक्तिशाली मन है वही विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो अहिंसा पर विजय प्राप्त कर सकता है, रोष पर, काम पर, क्रोध पर, लोभ पर। नहीं महात्मा बलहीनी ने अभ्यो न मीडिया न भूमा सोते न, श्रुति भी कहती है कि कमजोर आदमी को कुछ नहीं मिलता, ईश्वर भी नहीं मिलता। अरे कमजोर आदमी को तो देवता भी सहायता नहीं करते हैं, दैव दुर्बल घातक लिखा है नीति शास्त्रों में कि देवता भी दुर्बल को भगा देते हैं, उन्हीं को मार देते हैं, दुर्बल को देवता मार देते हैं। जैसे बकरे की बलि लिखी है, हाथी शेर की नहीं लिखी है।
वाह दुर्बल,
हाँ सिंह नहीं हो गजे नहीं हो, अश्वम नहीं बचो नहीं बचो, अजापुत्रम बलिम बद्दा दैव दुर्बल घातक। तो बेचारे बकरी को नहीं 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 करता, उसको कान पकड़ के लिए आगे काट देते, बोले काली माई की बकरी है, चलो चढ़ा दिया। अरे बलि देनी है तो जाओ शेर को पकड़ के ले आओ। तो ये मन की दुर्बलता का कारण है, तो मन की दुर्बलता सिवाय ईश्वर की उपासना से हो नहीं सकता। अध्यात्म की कमी भौतिक बात की बढ़ोतरी, अब भौतिक बात तो चरम सीमा पर हो गया, उसका परिणाम क्या है तेज जी आप तो देख ही रहे हैं, अब शायद हम ही का बाजार अच्छा चलेगा।
भौतिक संपत्ति के बाद में आदमी शांति की खोज करेगा,
मेरे पास आएगा, और मेरे पास तो सबके देने के लिए है, हिंदू धर्म में कोई बंटवारा नहीं, आओ नहीं जाओ, तुम्हें शांति चाहिए ना, तुम मुसलमान हो मुसलमान अच्छे मुसलमान बनो, अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो अच्छे मुसलमान कहां से हो सकते हो, अगर शांत नहीं हो तो अच्छे क्रिश्चियन कहां से हो सकते हो, अगर शांत नहीं हो तो अच्छे हिंदू भी कहां बन सकते हो। और ये संपत्ति हमारे पास तो इतनी पड़ी है कि सारे विश्व को देने के बाद भी वो तो नहीं रह जाएगी हमारे पास। इस शांति को स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम करके फिर हम आपके पास आए हैं, और तेज जहां होगा वहां तक प्रकाश होगा,
आपकी कृपा है महाराज जी। स्वामी जी यहाँ के श्रोताओं के लिए आवश्यक है, वैसे तो कहते हैं कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर इत्यादि जो शब्द है यहाँ के शायद सुनने वालों के लिए कुछ अजीब सा होगा, क्योंकि अक्सर स्वामी महात्मा लोगों को स्वामी जी से ही जाना जाता, तो आप कृपा करके यति चक्रवर्ती आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर का कुछ जाने की कृपा करें।
देखिए हम सन्यासी हैं तो हम लोग अनुयायी हैं शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के, तो आदि शंकराचार्य ने चार पीठ बनाई और सात अखाड़े बनाए, उन सातों अखाड़ों में सब नागा सन्यासी रहते हैं, तो उन अखाड़ों के अंदर एक एक डिवीजन ऐसा समझ लीजिए, वो मिलिट्री टाइप डिवीजन है, तो उनकी जो उनको जो शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं वो आचार्य मंडलेश्वर होते हैं, वो आचार्य मंडलेश्वर एक होते हैं, तो सात अखाड़ों के सात आचार्य मंडलेश्वर होते हैं, उनको जो प्रधान है उसको आचार्य मंडलेश्वर कहते हैं, और जो जो सहायक होते हैं वो मंडलेश्वर होते हैं। तो मंडलेश्वर भी किसी अखाड़े में 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं ऐसे, लेकिन जो आचार्य मंडलेश्वर हैं वो सात ही एक ही होंगे, दो नहीं हो सकते हैं। और आचार्य जो मंडलेश्वर है उसको अखाड़े वाले और भी एक कमेटी ऐसी होती है कि जो सब लोगों को सब लोग मिल करके उसको चुनते हैं, तो बड़ा गौरवान्वित पद है ये, तो उसमें कुछ नियम है कि भाई ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए, उसकी वंशावली देखते हैं, उसका उसकी शिक्षा दीक्षा देखते हैं, उसकी परंपरा देखते हैं, उसका स्वयं का अपना तमाम जाँच पड़ताल करते हैं, इसका आचरण कैसा है, रहन सहन कैसा है, समाज में कैसा स्थान है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई पद नहीं है, सबसे बड़े में बड़ा पद है। अब सोचिए कि 1 बिलियन आदमी है, उसमें सात आचार्य मल्लेश्वर हैं और चार शंकराचार्य, ये तो शंकराचार्य भी बहुत हैं, अभी तो कुल में बहुत शंकराचार्य, उनकी लिस्ट आई थी सब भगा दिए, बोले नहीं यही चार हम मान्यता देंगे, अखाड़े वालों ने कहा पांचवा नहीं, किसी को जमीनों में नहीं देना चाहिए, शंकराचार्य लिख लेते हैं सदैव लेके घूमते तो सब बंद हो गया है। तो ये बड़ा ऊंचा पद है और उसमें शिक्षा दीक्षा तो आवश्यक है, तो
साथ भी होते
हैं, हाँ हाँ बैठते हैं तो साथ होता है सब आपस में, और कोई बात ऐसी शंकास्पद होती है तो बैठ करके फिर उसको सुलझाते हैं, एक दूसरे का प्रमाण देते हैं अच्छी तरीके से, हाँ एक दूसरे को खूब काट करते हैं, लेकिन होगा वो शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय विधि से वो अपना प्रमाण देंगे हम अपना प्रमाण देंगे, तो जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन वो परंपरा जैसे पहले चलती थी शास्त्रार्थ की वो नहीं है, अब तो कोई अमुक अमुक विषय कोई ऐसा अटक जाएगा तब उसके लिए सब इकट्ठे होते हैं और फिर उस विषय पर विचार विमर्श होगा, तो उसी को शास्त्रार्थ कहते हैं, तो जो निर्णय सर्वसम्मत से होगा फिर वही सही माना जाएगा, तो इस तरीके से। और यति चक्रवर्ती जो है ये वाराणसी की जो विद्युत परिषद है वहाँ की, वो हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी मानी जाती है, उसमें सारे विषयों के विद्वान होते हैं, श्रेष्ठतम विद्वान होते हैं, तो उन लोगों ने ये यति चक्रवर्ती की उपाधि मुझे दी थी, हाँ उन सबको बुलाया था मैंने और बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ हुआ, तो फिर वो उन्होंने दिया था ये बात। अब मेरा ख्याल है कि यति चक्रवर्ती की उपाधि अभी तक विद्युत परिषद ने और किसी को दी नहीं, तो उन लोगों को शायद अच्छा लगा कि ये उपाधि हमारे लिए ठीक है, ये उन लोगों का सोच है।
समझिए भारत में अभी कितने इस पद की यति चक्रवर्ती,
कोई नहीं, हाँ हाँ वो तो उपाधि मैंने जैसे कहा ना कि विद्युत परिषद देता है, परिषद है वाराणसी में, तो वो अलग अलग उपाधियां लोगों को देते रहते हैं, लेकिन ये यति चक्रवर्ती मैंने और पहले किसी को नहीं देखा, क्योंकि एक उपाधि दो आदमी को दी नहीं जा सकती,
अभी से इससे ऊपर अब शंकराचार्य ही है।
नहीं नहीं यति चक्रवर्ती तो ये उनके तरफ से सम्मानजनक उपाधि है, ये कोई परीक्षा नहीं है कि यति चक्रवर्ती मतलब सम्राट के तरीके, ये एक उपाधि के तरीके है जो विद्युत परिषद देती है। शंकराचार्य और जो जो आचार्य मल्लेश्वर है ना वो समान ही है, इक्वावेलेंट है, कहीं भी किसी भी समय अगर कोई उत्सव होता है तो हमारा आसन और उनका आसन बराबर ही लगता है, कोई भी आचार्य मल्लेश्वर होगा तो वो बराबर ही बैठेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ वो ऊंचे बैठे हैं और आचार्य मल्लेश्वर नीचे बैठे, वो अपने मठों के प्रधान हैं और हम अपने डिवीजन के प्रधान हैं, और ये दोनों जो है शंकराचार्य ने बनाया, ये दोनों ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ, ये शंकराचार्य का निर्मित किया हुआ है, इसलिए आचार्य मल्लेश्वर, चूंकि आचार्य मल्लेश्वर की इतनी ख्याति नहीं, शंकराचार्यों की ख्याति है, मठामनाय में प्रधानता है उनकी, बाकी बाकी कामों में तो समानता है।
तो किसी स्वामी के नाम के अंत में पुरी या गिरी लगा हो,
ये मतलब सन्यासी है, ये 10 नाम होते हैं, गिरी पुरी वन पर्वत आश्रम ऐसे 10 हैं, तो 10 नाम ही कहे जाएंगे, तो 10 नाम जिसके
तो सब शैव संप्रदाय के माने जाएंगे,
सब शैव संप्रदाय। अब ये जो स्वामी वाला रोग है ये बड़ा भयंकर हो गया,
वही इसलिए तो ज्यादा स्ट्रगल कर रही
है, जो स्वामी नहीं लिख सकते हैं वो भी स्वामी लिख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सन्यासियों का बड़ा गौरवमय स्थान है, और हिंदू जनता जो है वो स्वामी का मतलब है समझती है कि शिक्षित होंगे पढ़े लिखे होंगे, इनका अपना आदर्श होगा, तो बड़ा मान सम्मान शुरू से, और आज भी कुंभ में सबसे पहले हम लोग स्नान करते हैं, उसके बाद दूसरे संप्रदाय के लोग स्नान करते हैं, तो हर जगह सन्यासियों का बड़ा सम्मान है, सरकार में भी और वैसे आम जनता में भी, तो अब सभी स्वामी लिखने लग जाते हैं, वैष्णव लोग भी स्वामी लिख लेते हैं, कहीं कहीं लाल कपड़े पहन लेते हैं, हमने कई देखा ऐसे, और उदासी संत भी स्वामी लिखते हैं क्योंकि निर्माण लिखते हैं वो लोग, तो अब आज ऐसा है कि वो नियंत्रण रहा नहीं, पहले क्या होता था कि वो अखाड़े वाले पहुंचते थे नागे लोग और तो ठीक कर देते थे, लेकिन आवाज ठीक करने वाली बात तो है नहीं, आज तो सरकार कहती है जो कुछ भी मर्जी आए लिखो पढ़ो आपकी अपनी इच्छा है, इसलिए दूसरे संप्रदाय के लोग भी मल्लेश्वर लिखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरीके से रिचुअल्स हमारे यहाँ किए जाते हैं मल्लेश्वर होने के बाद, इस तरीके से उनके यहाँ तो होता नहीं, क्योंकि उनके यहाँ मल्लेश्वर होने की आचार्य मल्लेश्वर होने की तो कोई परंपरा है ही नहीं, लेकिन अब वो लोग भी दूसरे लोग भी ऐसे लिखने लगे और उस पर कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए नियंत्रण नहीं कि अगर हम कुछ करते हैं तो सरकार आगे यहाँ पे हो जाती है, तो इसलिए स्वामी कहने का मतलब ये नहीं कि वो भी सन्यासी है, आप पूछ सकते हैं गिरीपुरी बात भारती वन पर्वत आरण्य सरस्वती ये सब अगर लिखा पीछे लिखा है कुछ तो आप सुन लीजिए सन्यासी, और नहीं तो बाकी तो स्वामी है स्वामी तो कोई याद भी हो दूसरों के न सही तो अपनी पत्नी की तो है ही
क्या बात है वैसे स्वामी जो शब्द है देखा जाए जैसे आप लोग आप तो किसी हर एक भौतिक वस्तु को त्याग ही दिए लेकिन स्वामी है तो किसके है मन के आत्मा के किसके क्या स्वामी कहते हैं
स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार
भौतिक तो आपको त्याग
नहीं उसका अधिकार नहीं भौतिकता तो दूसरे लोग जो मानते भी हैं वो केवल मानते ही है नहीं अधिकार है ना लेकिन हमारे पास हो या ना हो वो एक अलग चीज है लेकिन वस्तुतः ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि मन पर किस तरीके अधिकार किया जाए मन को नियंत्रित कैसे किया जाए इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाए और आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए ये हमें सिखाया जाता है ये हमारी अपनी कमजोरी मानी जाएगी कि अगर हम इसको नहीं सीख पाते हैं या हम उसका नियंत्रण नहीं रख पाते कि कमजोरी हमारी है परंपरा के नहीं सन्यासी परंपरा के नहीं इसीलिए उसको स्वामी कहते हैं जो स्वयं में नियंत्रित हो अगर स्वयं में नियंत्रित नहीं है तो आपको क्या बताएगा तो स्वामित्व का मतलब होता है कि इस शरीर का जो स्वामी है उसकी जानकारी तो इस शरीर का इस मन का और इन इंद्रियों का बुद्धि का जो स्वामी है वो आत्मा है तो जो आत्मा को पहचानता है वही स्वामी है जो आत्मा को नहीं पहचानता है जो समझता है कि मैं मन ही हूं मैं बुद्धि ही मैं इंद्रियों ही हूं तो फिर वो स्वामी कैसे हो सकता है तो मूल तो आध्यात्मिक पक्ष तो यही है
बहुत सरल परिभाषा में अपने स्वामी का तात्पर्य बहुत बढ़िया स्वामी जी तो ब्रिस्बेन में इतने अल्प समय के लिए क्यों
समय तो कोई अल्प होता नहीं समय तो समय ही होता है उसको हम जब मापदंड में ले आते हैं तो अल्प और अधिक कह लेते हैं ना और देखो बहुत अच्छी चीज में बहुत पेट भर खाया भी नहीं जाता वैसे ब्रिस्बेन को मैं बड़ा प्यार करता हूँ और बड़ा अच्छा है कुछ यादें हमारी ऐसी हैं जो इस ब्रिस्बेन को देखने के बाद में हरी हो जाती है
जैसे
फिजी की
अच्छा
तो आपको तो मालूम है कि मैं बहुत दिनों से फिजी जाता हूँ तो अब फिजी से आप सभी लोग निकल आए हैं लेकिन वो बेचारे खजूर के पेड़ जिन्होंने मेरा स्वागत किया था अभी भी वैसे ही है ना लेकिन मैंने देखा कि उनकी आधी पत्तियां सूख गई हैं और आधी जो जड़ों से लगी है थोड़ी बहुत वो हरी है अब सूखे पत्तों का हिलना और हरे पत्तों का हिलना दोनों में तो संवेदना का बड़ा फर्क पड़ता है
क्या बात
है ना एक आत्मीय का बाई बाई कहना और एक पड़ोसी का बाई बाई कहना दोनों में बड़ा अंतर होता है तो वो एक संवेदना जैसी होती है अब यहाँ आते हैं आप लोगों को देखते हैं तो लगता है कि अनजानी ये गलियां भी अपनी परिचित हो रही हैं है? और कहीं कहीं कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बरबस और कुछ रास्ते ऐसे हैं है ना हालांकि गेवल वाले तो नहीं है लेकिन अब तो गेवल के रोड तो बड़ा मुश्किल है ढूंढना पड़ेगा ना पहले तो गेवल वाले रोड से ही जाते थे नांदी से ढूंढते थे तो ऐसी कुछ और कुछ मौसम भी है
जी।
कुछ मौसम भी बड़ा मिलता जुलता है फिजी से है ना
जी बिल्कुल
कुछ ऐसी यादें हैं कि यहाँ आता हूँ तो लगता है कि कहीं ऐसा भ्रम होता है वैसे तो ये मालूम है कि ब्रिस्बेन है लेकिन लोग कहते हैं दो चीजें हैं एक तो ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन है तो ब्रिस का अर्थ होता है जहर और बैन माने बाणी लेकिन लोग बोलते ही बड़े मधुर है उल्टा है उल्टा है एक बार है जैसे कि कहीं अमेरिका हम गए तो हमसे बोले कि समझिए दोपहर का समय था कुछ लड़कों के साथ हम घूमने गए थे लौटे तो 2 बज गए तो हम कहा समझिए हमें अगर बहुत भूख लगी तो हम लोग तो कुछ खाएंगे अभी खा लो तुम लोग हमें क्या इतराज हो सकता है तो बोले कि ये पिज्जा है पिज्जा हट है हम लोग खा लेते है क्या बोलते हो आप लोग बोले ये पिज्जा हट है खा लेते हैं हमने कहा भाई दोनों बातें उल्टी क्यों बोलते हो इस पर लिखा है पिज्जा और आप बोलते हो खाने जा रहे हो
खाए जा क्या बात है
तो ऐसे इसका नाम तो है ब्रिस्बेन है ना। लेकिन लोग बड़े मधुर हैं, बड़ी प्यारी बातें उनकी लगती हैं, है ना।
भक्ति जी के तमाम लोग हैं,
हाँ तमाम लोग हैं। और कभी कभी कहीं कहीं जब जो समुद्र का किनारा है कि नहीं, उद्गम उत्पन्न कर देता है कि हम कहीं किसी फिजी के किनारे खड़े हैं या क्योंकि वृक्षों में बड़ा साम्य है, कुछ इसी तरीके के टीले पेड़, छोटे से पेड़, नंदे से कम पत्तों वाले हैं, कहीं खजूर के पेड़ या खजूर के ताड़ के भी पेड़ दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो आपने इतनी गौर से नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं तो अपनी यादों को इनसे मिलान करता रहा ना, तो मुझे बहुत सी चीजें दिखलाई पड़ी। आप लोग तो सड़क से आते चले गए होंगे, है ना, तो ऐसा लगता है मेरे को। तो इसलिए मैंने आमंत्रण स्वीकार किया, और पहली बार जब आया तभी मेरे को लगा कि अच्छा लगा मेरे को ये शहर, और मेरे ख्याल तीसरी चौथी बार मैं आ रहा हूँ शायद। और ये अमिता जी जो मेरे को धमका देती हैं कि आप सिडनी वालों के लिए पक्षपात करते हैं, और ब्रिस्बेन में अगर आप नहीं आएंगे तो मैं यही मान लूंगी कि शायद ब्रिस्बेन के लोग अच्छे नहीं लगते आपको। अभी इतने अच्छे लगते हैं कि ये अनुरोध तो बड़ा मुश्किल है कि ठुकराया जा सके, और स्वयं भी मुझे ब्रिस्बेन अच्छा लगता है, दोनों बातें।
अब अमिता जी की कृपा से ही हम ब्रिस्बेनवासी धन्य हुए, आप रेडी में ही आ गए। धन्य स्वामी जी, आप पहले जब श्री चैतन्य स्वामी श्री चैतन्य शास्त्री नाम थे,
उसमें तो आपने दिया ही इंटरव्यू, तमाम रिकॉर्डिंग आप लोगों ने
सुबह सुबह थे, सुबह 5 मिनट के धार्मिक कार्यक्रम स्वामी जी की आवाज में अभी तक जाता है हमारा।
अच्छा,
अभी चलता है,
होगा, हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत रिकॉर्डिंग का भी लगभग 22-24 दिन रहे हूँ वहाँ, कई कई विषयों पर, कई विषयों पर मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करके रखे थे, न्यूजीलैंड में आरव शर्मा जी ने दिया था मेरे को, वो बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े आदर्श पुरुष थे, इतना बढ़िया बोलने वाला, इतना मीठा बोलने वाला, भान के कई गुण उनके अंदर थे, दिव्यता थी उस महापुरुष में, इसमें दोहरा नहीं। तो उन्होंने संजो करके सब रखा था, मैंने उसे कहा बोले हाँ समझ है, लेकिन ओरिजिनल नहीं दे गए, डुप्लीकेट ले जाए। तो हमारे पास अभी भी है वहाँ
जी,
हाँ। तो न्यूजीलैंड भी हम उन्हीं के कारण गए।
अच्छा,
हाँ हाँ, जब गए वहाँ तो, और अब उसी देखिए ना, ये क्या कहते हैं, वंशवेली एक वृक्ष होता है वंशवेली में, जिसकी वेलियाँ तमाम जगह बिखरी होती है। अब यहाँ भी आने का कारण अमिता जी है, अब उसी वृक्ष की एक वेली इधर है, अब आप तो सभी लोग, अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे फिजी सारा यहाँ आ गया है, मेरा फिजी का रेडियो स्टेशन यहाँ आ गया है। अब तो जब भी मैं आऊँगा, मैं चाहूँगा कि कुछ अपने लोगों के लिए, कुछ आपके लिए, कुछ अपनी भावनाएं, हम जो हमारे अपने फिजी के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, खैर यहाँ के लोग तो बेचारे हिंदी नहीं समझ पाते, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं यहाँ हैं, जो फिजी से आए हैं या ऑस्ट्रेलिया से आए हैं या भारतवर्ष से जो लोग आए हुए हैं, वो सब मेरे तो हैं, ये भी मेरे ही हैं, कम से कम ये मेरी वाणी नहीं सुनेंगे, मेरी भावनाओं का तो कदर करेंगे। वाइब्रेशन भी कोई चीज होता है,
फिजी के अधिकांश लोग जो है वो या तो यूपी या बिहार से आए थे, और आप की जो वाणी है उसमें उनको आत्मीयता महसूस होती है, कि आप भी उसी क्षेत्र के।
देखो भाई, ये प्रश्न तो बड़ा गड़बड़ वाला है, इसलिए कि सन्यासी से ये नहीं पूछना चाहिए, हाँ भाषा से पकड़ लो तो ठीक है।
समझिए
है ना,
क्योंकि आप में जो हम लोगों के प्रति जो लगाव जो आत्मीयता है उसे काफी आभास हो जाता है।
मैं इसका समर्थन भी नहीं कर सकता और खंडन भी नहीं, तो दूसरे लोग कहेंगे कि दूसरे लोग स्वामी चाहते नहीं। और सन्यासी होने के बाद तो मानव मात्र के हम हैं, सभी मेरे प्यारे हैं, सभी मेरे अंतरंग हैं, सबके लिए हम सुख की कामना भगवान से करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आत्मा में बंटवारा नहीं है, हमारी दृष्टि सबके लिए आत्मा परक होती है। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग को हम एक ही दृष्टि से देखते हैं, यूँ अलग है कि हम शैम्पू लगाते हैं सिर पर, पाँव में नहीं लगाते हैं, क्रीम चेहरे पर लगाते हैं, पाँव में नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो हाथ उसी क्षण पहुंच जाता है वहाँ। कर्म की दृष्टि से अलग अलग हैं, लेकिन जो इसका मालिक है उसको सारे अंग प्यारे हैं, कर्म की दृष्टि से तो अलग अलग है।
सर जी, अब नवरात्रि बीत चुकी है, दीपावली आने वाली है, और जब हमने सुना कि आप यहाँ पर हैं और आपसे आपके अनुभवों से और दीपावली पर कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को कुछ मालूम हो दीपावली के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप सारांश में दीपावली पर कुछ प्रकाश डालें। अभी से लेकर दीपावली के समस्त 5-6 जो पर्व होते हैं, ऐसा कहना तो समय बहुत लगेगा, लेकिन सारांश में जो भी आप यहाँ के लोग।
देखिए, दीपावली तो ऐसा है कि कहानियाँ तो आप लोगों ने सुनी रखी होगी, और चूँकि सदियों से ये बात चली आ रही है, तो दीपावली तो वह अभी से हमारे 4 त्यौहार हैं, रक्षाबंधन है, दशहरा है, दीपावली है, होली है। तो रक्षाबंधन भी हो गया और दशहरा भी हो गया, जैसा कि आपने कहा कि नवरात्रि हो गई है, दशहरा और अब आई दीपावली। दीपावली मध्य का त्यौहार है, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, शुद्धता का है, ओजस्विता का है, शांति का है, कर्मठता का है, नवीनता का है, और जीवन को सुस्वादपूर्ण बनाने का संकेत देने वाला है। इसलिए प्रकाश की चर्चा दीपावली में की गई। दीपावली का अर्थ ही होता है दीप की अवली, अवली मैंने होता है कतार, दीप की अवली के मिले एक दिन ही अवली प्रकाशित हो, अवली प्रकाशित हो। अब यहां अवली का तात्पर्य व्यक्तिगत अगर लें आप, तो देखें कि हमारे पास ये तमाम दिया है, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण है, ये अवली है हमारे पास। तो बुझे हुए दीप से प्रकाश नहीं हो सकता, उसमें तेल भी हो, बत्ती भी हो, दिया भी हो, तेल हो, बत्ती हो, प्रकाशित ना हो तो मानव जीवन तो बेकार हो गया। ये ऐसा नहीं कहता कि केवल तुम अपने दरवाजे पर दीपक रख दो या अपने घर के अंधकार को दूर कर दो, गलियों के अंधकार को दूर कर दो, इसके लिए तो ये प्रकाश है। बाहरी अंधकार को दूर करने के लिए तो प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, विद्युत प्रकाश है, अनेक अनेक साधन है। लेकिन इस प्रकाश से जीवन ही प्रकाशित हो सकता है, जो अंतःकरण में बसा हुआ अंधकार है उस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इंद्रियों में बैठा हुआ जो अंधकार है, प्राणों में जो बैठा हुआ अंधकार है, कर्म इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो बैठा हुआ अंधकार है, उसकी तरफ भी ये भारतीय संस्कृति की जो दीपावली है ये हमें संकेत देती है। प्रकाशित जीवन दोनों तरफ से होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए और अंदर भी होना चाहिए। अंधकार जब होता है, ठीक से दिखलाई नहीं पड़ता है, तभी मनुष्य अहंकार करता है। अगर दुनिया का सही स्वरूप मालूम हो जाए तो अहंकार किस बात का। अगर प्रकाश हो जाए तो प्रकाश में सारी चीजें स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, मानव कभी ये कह नहीं सकता कि यह सृष्टि हमारी है, ये धरती हमारी है, ये धन हमारा है, ये भूल हमारा है, कैसे कहेगा बताइए आप। इससे बड़ा और कोई पाप हो सकता है कि ईश्वर की सारी सृष्टि और वो कहता है कि मेरा ये लड़का, मेरा पत्नी, मेरी समाज, मेरा, ये तो उल्टा बोलता है। ये केवल अंधकार के कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ती, और अंधकार का तो ऐसा प्रभाव है कि रस्सी को भी लोग सांप मान लेते हैं। दीपावली कहती है कि अगर दीपक जलता हो तो रस्सी रस्सी ही रहेगी, सांप कभी बन नहीं सकती है, और उससे हम भयाक्रांत नहीं होंगे। मृत्यु तक वो सोच लेता है कि ये सांप कहीं काट न ले मेरे को, उसका कारण अंधकार। और वो अंधकार कहाँ रहता है, वो अंतःकरण में रहता है अंदर, जिसको न ये दीपावली हटा सकती है और न सूर्य हटा सकता है, न बिजली के बल्ब ही प्रकाशित कर सकते हैं। नाम अंतस्तमोहारी साधुरी मन पास करा, लोगों के अंदर बैठा हुआ जो अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, जब तक इसको हम दूर नहीं करेंगे तब तक सच्चे अर्थ में दीपावली का सच्चा अर्थ नहीं बनता है। घर को पवित्र करते हैं, वर्षा के अंत में ये दीपावली आती है तो घर को लीपते हैं, पोतते हैं, पवित्र करते हैं, कि वर्षा के अंदर जो पैदा हुए जीवाणु हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना, किंतु गोबर से लिपा जाए तो गोबर से कहाँ लिपते हैं, तो गोबर में ये शक्ति है कि जो विषाक्त जीवाणु है मर जाते हैं, लेपन से भी मर जाते हैं, उसके गंध से भी मर जाते हैं। उसके बाद फिर कड़ुआ तेल से दीपक जलाते हैं, मस्टर्ड ऑयल के दीपक जलाते हैं किसी ने, अब आजकल तो मोमबत्ती जला देते हैं, तो फैशनेबल दीपावली हो गई।
तो घी के,
घी नहीं, कड़ुआ तेल, कड़ुआ तेल में, कड़ुआ तेल से जो दीपक जलता है तो उससे जो धुआं उठता है उससे जो विषाक्त जीवाणु है मर जाते हैं, इसलिए कड़ुआ तेल बनाया जाएगा, कड़ुआ तेल से दीपावली होनी चाहिए कड़ुआ तेल। और नहीं तो घर के हर दरवाजे पर तो होना ही चाहिए। तो घर के अंदर का तो अंधकार हम दूर कर लेते हैं, गलियारों का तो दूर करने की पूरी चेष्टा करते हैं, लेकिन जो अंधकार हमारे अंदर है उसको हटाने की चेष्टा नहीं करते, जो मूल दोषों का कारण है। ये दीपावली हमें ये बताती है, प्रेरणा देती है कि उठो, जागृत हो। प्रकाश आलस्य का विरोधी है, प्रकाश भ्रम का विरोधी है, प्रकाश प्रमाद का विरोधी है। प्रमादम वही मृत्यु, शास्त्र हमारा कहता है कि प्रमाद मृत्यु है, आलस्य मृत्यु है। तो कहता है नहीं, उठो। सूर्य आता है अपने प्रकाश से रजोगुण की उत्पत्ति कर देता है, क्रिया उत्पन्न कर देता है, इसलिए सूर्य को प्रणाम करते हैं कि आलस्य छोड़ो, आओ। प्रकाश में इतनी शक्ति है कि वो आलस्य का अपहरण कर देता है, आलस्य को हटा देता है प्रकाश। तो बाहरी प्रकाश में इतनी क्षमता है कि वो आपके आलस्य को दूर कर देता है, आपके पुरुषार्थ को जागृत करता है, आपके नेत्रों को जीवित कर देता है, वस्तु को सही ढंग से दिखलाई पड़े ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। लेकिन मन का अंधकार है तो फिर सच्ची दीपावली कहां से? इसलिए आप जिस घर में रहते हैं वो भी प्रकाशित होना चाहिए। आपकी शरीर जिस घर में रहती है उसको तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन जिस शरीर में आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, वो भी प्रकाशित होना चाहिए। तो दोनों प्रकाश जब एक होते हैं, अंतरंग और बहिरंग जब एक होते हैं, तब सच्चे अर्थ में दीपावली होती है। अपने सत्कर्म के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने सद्वृत्ति के द्वारा, अपने श्रद्धा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अंदर का जो अंधकार है वो दूर किया जा सकता है। और जब अंधकार दूर हो जाता है तब ये प्रमाण है, आज हिंसा जो चरम सीमा पर है, विद्वेष जो चरम सीमा पर है, हैं, वैर भाव जो चरम सीमा पर है, उसका कारण यह है कि लोगों के मन का अंधकार बड़ा घना हो गया है। इसलिए हर आदमी केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, देने की बात सोचता नहीं, लेने की बात सोचता है। वो सोचता है कि हमने बहुत दे दिया, हमें कम मिला, इसलिए छीन लो, इसलिए छीन लो। आज ऐसे सोचने लगा कि हम देते हैं बहुत और मिलता है कम, ये केवल अज्ञान के कारण है। दीपावली मेरे प्यारे, दीपावली हमें याद दिलाती है कि चेष्टा करो कि तुम्हारे अंदर का जो अंधकार है वो भी दूर हो जाए। अपनी उन 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 दीप मालाओं को भी जागृत करो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो दीप हैं, ज्ञान के दीप हैं, इनको भी जला दो आप। उनमें भी स्पर्धा, उनमें स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बंधुत्व होना चाहिए। तो सही दिशा में आदमी सोचने लग जाता है, फिर ये सारा का सारा जो विश्व है वो नंदन बन बन जाएगा। वसु हुए कुटुंबकम, हमारे यहाँ जो कहा गया है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, सारे विश्व के परिवार। अभी तो परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रही है, विश्व की बात तो छोड़ो, है ना, अपने घर को लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, जिले को नहीं संभाल पा रहे हैं, प्रांत को नहीं संभाल पा रहे हैं, और विश्व को संभालने की बात करते हैं, है ना। उसका काम उनका मन है, उनका मन प्रकाशित नहीं है, बुद्धि प्रकाशित नहीं है, इंद्रियों में तृप्ति नहीं है, इंद्रियां प्रकाशित नहीं है। जब इंद्रियों में भी प्रकाश हो जाता है तो इंद्रियां व्यर्थ की चीजों को एकत्रित करना छोड़ देती है, मन व्यर्थ का चिंतन करना छोड़ देता है। निश्चिंत आदमी हो तो बड़े आराम से निद्रित हो सकता है, उसको गोली खाने की क्या जरूरत है। मन जितना ही शक्तिशाली होगा उतना निर्भयांत होगा, वो किसी से डरेगा नहीं। डर तो अंधकार में लगता है, ठूंठ देख के लोग भागते हैं, भूत खड़ा है। अगर प्रकाश चारों तरफ हो तो भूत आएगा, और भूत आता ही अंधकार में। अंधकार साधन है भूत के आने के लिए ना
जी।
अरे आप तो सोचो, आपके पास पांच भूत हैं, एक भूत आता है उसे पांचों को लड़ा दो, कहीं सोचो। भूत प्रेत वाली बात क्या करें, हमारे फीजी में तो बहुत है, वो दस होकर हर घर में भूत है, लगता है कि सारी दुनिया भर के भूत फिजिए पहुंच गए है ना। ये सब मन की कमजोरी का फल है। दीपावली हमें याद कराती है, याद दिलाती है कि केवल घर को ही साफ मत करो, दीप माला जला दिया इतनी से छुट्टी मत कर लो, उस रात्रि तो बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से अभ्यर्थना करो, भगवान से मांगो कि भगवान हमारे मन के जो दीप है वो भी जला दो, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो, हमारी इंद्रियों को प्रकाशित करो, जिससे हमारे अंदर देने की भावना हो, अच्छा सोचने की भावना हो, अच्छा देखने की भावना हो। अच्छा देखें भजन करने भी सुनियाम, अच्छा सुने, किसी की निंदा स्तुति न सुने, अच्छी बात सुनने को मिले है ना। अब अच्छी बात कैसे सुनने को मिलेगी, अभी तो ये जब रेडियो खोले तो यही सुनता है कि इतने रेड हो गए, इतने बम गिरा दिए गए, इतने लोग मार दिए गए, यही सुनते हैं ना।
बिल्कुल,
तो भद्रम करने से स्वयं काम क्या, यही सुनने के लिए भद्रम करने भी सुनिया देवा भक्ति पशे माक्ष भरी रहा। और अच्छा देखे, किसी को मुस्कुराते हुए देखें, किसी को फलते फूलते देखें, किसी को स्वस्थ देखें, ये अच्छा हुआ देखना। और हमारे पांव भी अच्छी जगह चलें, दीवाले की तरफ चलें, किसी की मदद करने के लिए चलें, किसी की सहायता करने के लिए चलें, हमारे हाथ उठें जरूर, नहीं किसी को दुख देने के लिए, नहीं किसी को मारने के लिए, नहीं हाथ उठें दूसरे की मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, अपना बनाने के लिए, प्रेम से आलिंगन करने के लिए तेज। आज इसकी कमी हो गई है, इसलिए कि हमारा मन प्रकाशित नहीं है, इसलिए मन कमजोर हो जाता है, हर चीज को सुरक्षित रखना चाहता है, बटोरना चाहता है। बटोर के रख देने से कोई चीज सुरक्षित नहीं होती है, सुरक्षित होती है उसको बांट दो। तो दीपावली हमें यह संदेश देती है, ये दीपावली है, हमारे हर त्योहार हमें किसी न किसी रूप में कोई न कोई संदेश देते हैं। कहानियां तो हमारे प्यारे सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में क्या करें, लेकिन जो वस्तुतः आध्यात्मिक शिक्षा हमें हमारे त्योहार देते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए कि ये दीपक को जला करके न छोड़ दो। हमारे प्यारे हिंदुओं, हमारे प्यारे भक्तजन, इस दीपावली में उस अंधकार को जला दो जिसमें हिंसा पलती है, वैर भाव पलता है, विद्वेष पलता है, जिसमें नफरत पलता है, उस अंधकार को हटा दो, भगा दो, सबको अपना समझ लो, सबको अपना जला लो, सब एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलो, एक दूसरे को अपना समझ के मिलो, यही दीपावली हमें संकेत देती है।
धन्य समझिए, आपसे समक्ष आपके बैठने पर इतने सारे सवाल उठते हैं, ऐसे मन करता है कि आपको सुनते ही रहे, लेकिन हमने वादा किया था लोगों से कि वो सवाल करें, इसलिए हम अब अपने श्रोताओं को मौका दे रहे हैं कि आप यहाँ रिंग करें 79 ब्रिजवानी पर, और स्वामी जी से अगर कुछ प्रश्न करना चाहें तो आप अवश्य ही कर सकते हैं। फिर स्वामी जी जरा विषय को हटाते हैं, यहाँ ब्रिजबन में जब माता पिता आते हैं तो अक्सर बच्चे जो उनके होते हैं उनका पीयर प्रेशर इतना अधिक होता है कि अपनी संस्कृति अपने धर्म बनाए रखने में अपनी मर्यादाएं उनको कठिनाई होती है। माता पिता एक तरफ अकेले होते हैं और सारी दुनिया या उनके जो बच्चों के जो सारे दोस्त इत्यादि सब होते हैं उनका दबाव इतना अधिक होता है कि बच्चे को अपनी संस्कृति में ढाले रहना बहुत कठिनाई होता है माता पिता के लिए। तो माता पिता को उस हालत में क्या करना चाहिए, आप उस पर कृपा करके प्रकाश डालें। विश्व में सारी जगह यही समस्या शायद होगी,
बस सब जगह है, ये तो सही बात है, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ माता पिता का बड़ा बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की। और हमारे यहाँ तो आपने से ठेठ भाषा में कहते हैं नान है गुण सयाने विद्या, तब तक बच्चा बिल्कुल कोमल है, उसका हृदय बिल्कुल कोमल है, मिट्टी बिल्कुल कोमल है, जो चाहिए आकृति दे दीजिए और वो आकृति अंत तक रहती है, आकृति को ही पकाया जाता है घड़े में, मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में पहले आकृति दी जाती है और फिर उसको पका देते हैं, और जब वो घड़ा पक जाता है, तेज जरा ठीक से समझिए इस बात को, अगर घड़े वो टूट जाए ना तो वो मिट्टी में पुनः नहीं मिलता है, उसका कोई ना कोई टुकड़ा आपको याद दिलाएगा ये पका हुआ घड़ा है, मिट्टी से ही बना है, वो मिट्टी में भी जाएगा लेकिन वो पुनः मिट्टी नहीं बनेगा। इस तरीके के छोटे बच्चे हैं ना, माता पिता का ये कर्तव्य है, ये रोने की बात नहीं है। माता पिता को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं मिलती है, है ना। कितने तो बच्चे ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन चार चार दिन के बाद माँ बाप का मुंह देख लेते हैं
जी।
ऐसा लोग बताते हैं यहाँ के लोग, यहाँ आए तो ब्रेड बटर की भी बात है ना
जी,
है ना
जी, बिल्कुल।
तो फिर भी जो समय मिलता है बच्चों के साथ बैठना चाहिए और अपनी संस्कृति की वो चीजें उनको सिखानी चाहिए जो उनके जीवन निर्माण में सहयोगी हो, जिसको वो सारी जिंदगी याद रखें। तो ये चीजें बचपन में ही सिखाई जाए, जो अबोध मन है ना, इस तरीके से उसको अभ्यास करा दिया जाए कि बड़े होने के बाद भी वो उसको उसको करने में संकुचित ना हो, या ऐसा ना समझें कि कोई अगर वो करेंगे या वो मान्यता उनके मन में है तो डोमिनेटेड फील करेंगे। क्योंकि बाद में अगर आप समझाएंगे तब तक देर हो जाएगी, और जहां देर हो गई है वो माता पिता समझाते हैं तो बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि चारों तरफ तो इसी तरीके की संस्कृति है, ये समस्या सब जगह है
जी।
तो माता पिता का ये काम है कि समझाएं उनको प्यार से, बड़े होने पर तो जितना प्यार से समझाओगे अगर मानता है तो ठीक है, वरना हाथ से तो तेज निकल गई। लेकिन अगर वातावरण हो जैसे भारतवर्ष में है, हम सिखाते नहीं तो भी वातावरण इस तरीके का है कि बच्चे सीख लेते हैं
जी।
तो यहाँ इस तरीके का वातावरण बनाया जाए, जैसे मंदिर है, अपने त्योहार मनाए जाएं, उत्सव मनाए जाएं, तो जब बच्चे वहां आएंगे तो बहुत सी चीजें बिन कहे सीख लेते हैं, नहीं सीख लेते हैं
बिल्कुल
सीख लेते हैं। तो जैसे मंदिर है तो वहां अधिकतम उत्सव वगैरह होता रहे, छुट्टियों में अधिकतम ज्यादा तो दो चार और उत्सव ज्यादा कर लें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए, है ना, जिससे बच्चे उसमें अधिक से अधिक भाग लें। बच्चे काम करते हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस तरीके की समस्या यही केवल नहीं है, तो कुछ ज्यादा है भारत उसमें भी है, लेकिन तेज जी मैंने प्रयोग करके देखा है कि वो बच्चे प्यार के भूखे हैं, और दूसरी बात है कि वो बच्चे हमारे आप जैसे बच्चे नहीं है, उनको क्यूरियोसिटी है कि वो जाने, क्योंकि हमारे खिलाफ भी उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है
बिल्कुल।
तो हमारी जो विशेषताएं हैं अगर उनको ठीक ढंग से नहीं समझाया गया तो फिर उसी को वो अच्छा मान लेंगे, बच्चा है, हम आप तो है नहीं कि पके घरे हैं, अब हाँ हमको आपको तो कोई बिगाड़ नहीं से रहा है, क्योंकि हर चीज हम जानते हैं। लेकिन बच्चों को वो तो कच्चे घरे हैं, टेढ़े मेढ़े, अगर पूरा आकृति नहीं बिगड़ेगी तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो कर ही दिया जाएगा ना, तो पक्के भी टेढ़े मेढ़ा रहेंगे। इसलिए इस तरीके का आयोजन हमारे जो जितने हिंदू भाई हैं, मैं उन सबसे यही आग्रह करूंगा कि समय समय पर इस तरीके का आयोजन करें कि जिसमें बाल बच्चे भी भाग लें, उनको भी थोड़ा अवसर दिया जाए, वो अपनी संस्कृति को समझेंगे, सदाचार को समझेंगे, विचार को समझेंगे, और थोड़ी बहुत छूट तो चूंकि अब हम अपने देश में तो है नहीं, उन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ भी तो रहना है, उस मेरिट में भी रहना है, यही रहना है, और ये देश हिंदू देश तो है नहीं, तो उस धर्म का भी आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट हम यहाँ हैं, तो यहाँ के भी नागरिक बनेंगे तो अपने धर्म का हम सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म का हम सम्मान न करें, लेकिन फिर हमारी बात हमारे अगर संस्कार अच्छे हैं तो हम उतनी ही दूर जाएंगे जहां से हम फिर वापस लौट के आ जाए, हम इतना ज्यादा नहीं तोड़ेंगे कि विधेय डूब के मर जाए, है ना। तो इस तरीके बच्चों में जो संस्कार डालने के लिए संस्कार प्रधान है, और हमारे यहाँ तो ऐसे साधन है, और मैंने देखा कि मंदिर है यहाँ पर, अभी ये कि थोड़ा बहुत बड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, कोई बच्चों पर ही नहीं
जी,
बड़ों पर भी। देखिए ना, कोई उत्सव बड़ा भारी कीजिए, अब तो काफी लोग आ जाते हैं, भजन गाने लग जाएंगे, कीर्तन करने लग जाएंगे, आरती में खड़े हो जाएंगे, आरती गाने लगेंगे, तो ये पूरे भीड़ का प्रभाव जो दो चार नहीं मानते उनके ऊपर भी पड़ जाता है। तो इस तरीके का अगर आयोजन हमेशा होता रहे तो निश्चित है बहुत सी शिक्षाएं तो ऐसी हैं कि जो माहौल में पहुंच करके बच्चे पा लेते हैं। और कुछ माता पिता का भी कर्तव्य है, मैं ये कहूंगा कि इतना दूर बच्चों को न रखें कि बच्चे अपने धर्म को न समझ सकें, अपने उठने बैठने को न समझ सकें, अपनी भाषा बोल चाल को न समझ सकें। पहले तो बड़ा अच्छा लगता है कि केवल बच्चा अंग्रेजी जानता है और कोई भाषा नहीं जानता, है ना, लेकिन बाद में ही माता पिता रोने लग जाते हैं कि अपनी भाषा तो जानता ही
नहीं जानता,
इसलिए घर में अपनी भाषा बोलनी चाहिए, बाहर तो सारा सीख ही लेगा, उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं
बिल्कुल।
और घर में अपना आचार विचार होना चाहिए, बाहर का जो आचार विचार है तो सीख ही लेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुभ रात्रि तो आप ही बताओगे, शुभ प्रभातम आप ही बताओगे। कोई भी घर पे आता है तो उठ करके चरण स्पर्श करे, उनको नमस्कार करे, जय श्री कृष्ण कहे, जय श्री राम कहे, कुछ भी नमस्ते कहे, तो ये हमारा शिष्टाचार है। और हम चाहे अंग्रेज कितने भी बन जाए, लेकिन घर में तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के अनुसार शिष्टाचार को माने और उसका पालन करें। तो इसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल है और उनको वो मेरा ख्याल है कि पूरा करना चाहिए।
सर जी, यहाँ आप केवल बुधवार तक है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आज या कल कुछ कार्यक्रम है कहीं पर, नहीं?
अगर कुछ कुछ जानने का आवश्यकता है तो मेरे पास लिंक कर सकते हैं, मेरा नंबर।
अच्छा जी, स्वामी जी यहाँ शारदा वाजपेयी जी के यहाँ है, एक मिनट
जी। हाँ,
और अगर आपको, मैं शारदा वाजपेयी बोल रहा हूँ और हम स्वामी जी के चेला मानते हैं, हम वो हमारे गुरु हैं और करीबन 10-11 साल से ऐसा हो रहा है, और आपको किसी भी विषय पर जानने की आवश्यकता पड़े तो आप निश्चिंत मेरे पास रिंग कर सकते हैं, किसी भी वक्त रिंग कर सकते हैं। और आप हमारा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, वो है 3376 5025 तथा 3279 4875। अगर वो भी आपको याद नहीं ना हो तो आप व्हाइट पेजेस में वाजपेयी पर दे भी सकते हैं, तो आप इसमें बिना कोई चिंता के आप हमसे संपन्न कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी। अब दीपावली की ओर हम फिर बढ़ते हैं और लोगों से आगाह करते हैं कि अगर कुछ आपके प्रश्न हो तो आप हमसे यहाँ रिंग करें, स्वामी जी आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार है। दीपावली में अल्प रूप में जो अर्चना करते हैं यहाँ प्रदेश में, हम घर पर उस दिन क्या करना चाहिए समस्त परिवार के साथ?
लक्ष्मी पूजन की प्रधानता होती है उसमें, तो अगर ब्राह्मण मिल जाते हैं तो उनको बुला लेना चाहिए, वरना लिखा है कि चांदी का क्वाइन जो है या लक्ष्मी बना हुआ आजकल क्वाइन तो मिलता है यहाँ, तो अगर कोई साधन नहीं है तो अल्प मात्रा में कर ही लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की तो सबको आवश्यकता है
जी।
और लक्ष्मी पूजन करना कर्तव्य है, कोई लक्ष्मी ही मिले ऐसा नहीं। देखिए
लगता है कोई लाइन पर है। हेलो,
हेलो
जी,
नमस्कार।
नमस्कार,
कार्यक्रम तो बड़ा मजे की हो रही है।
हाँ जी
जी,
हाँ नमस्ते स्वामी जी, यहाँ है। आप लाइन पर होल्ड कीजिए, हम दीपावली के पूजन के जो सवाल है उसका उत्तर स्वामी जी समाप्त कर ले, तो आपके पास आते हैं, आप लाइन पर रहिए। तो आप कह रहे थे कि चांदी का सिक्का।
हाँ, चांदी का सिक्का है, 5 ले लें या 7 ले लें और उसको धो करके पहले दूध में डाल दें
जी,
और फिर उसको दूध से निकाल के फिर पानी से धो दें उसको, और श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। वैसे तो बहुत मंत्र है, श्री शते लक्ष्मी शपथ कन्या वहो रात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूप अश्विन आत्मा विष्णु निघाम मई खां सर्वलोकम मई खां, ये वेद मंत्र तो बहुत है ना। तो एक प्रक्रिया है, अगर संभव है और कोई पंडित जी मिल जाते हैं तो उनसे पूजन करा लें, सबसे अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए नहीं मिलते हैं और आपको करना है तो फिर तो घर में आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र बोलते हुए पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर बाहर निकाल करके चौकी पर रख दें कपड़े पर, और फिर उसके बाद चंदन लगाएं, चावल, फिर रोली से अभिषेक करें, है ना, सिक्कों का, और ये भावना करें कि हम लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। फिर पुष्प चढ़ा दें, फिर गंध दिखा दें, फिर दीपक चढ़ा दें, फल फूल है ये रख देना चाहिए, माल्यार्पण कर देना चाहिए, और फिर लक्ष्मी का ध्यान कर लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे महाराज आप आओ पधारो और हमें सद्बुद्धि दो, सद्वृत्ति दो। वाणी व्याकरण में तो लिखा लक्ष्मी रमत, एक सूत्र है कि जो अच्छी बुद्धि है उसको ही लक्ष्मी कहते हैं। सब कुछ हो, बुद्धि अच्छी नहीं हो तो क्या करोगे लक्ष्मी?
बिल्कुल
है ना, तो जो सद्वृत्ति है, सद्बुद्धि है, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं, क्या वो सत संपत्ति है। तो लक्ष्मी से भी प्रार्थना करो कि आपको सही उपयोग करने वाली जो बुद्धि है, हे माँ वो मुझे दे के जाओ, अगर वो मेरे पास रहेगी तो जरूर हम तुमको भूलेंगे नहीं, और जब हम आपको भूलेंगे नहीं तो जरूर तुम लौट के आओगी, आज नहीं तो कल जरूर आओगी। नहीं, अगर सदुपयोग नहीं है तो फिर लक्ष्मी आगे अशांत कर देती है। तो लक्ष्मी से ही लक्ष्मी को सदुपयोग करने वाली बुद्धि मांगना चाहिए। उसमें लक्ष्मी मत मांगो, उसको बोले हे माँ तुम आओगे तो जरूर लेकिन बड़ा गड़बड़ कर देती है तुम, इसलिए मुझे तुम सदबुद्धि दो। तुम आओ आपका स्वागत है लेकिन हमें सदबुद्धि दो कि जिसे हम आपका सदुपयोग कर सकें। लोग खाई ड्रिंक एंड बी मेरी वाली बात करते हैं, ये ड्रिंक एंड बी मेरी वाली बात नहीं, हमारे यहाँ तो भूखे रह करके भी सत्कर्म करने की बात कही गई है। पैसे से जितना हो सके धना धर्म तथा सुखम, धन से खूब धर्म करना चाहिए, जितना आगे खूब धर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म करोगे तभी फिर धन आएगा। धन से धन कमा लिया तो उसे कोई धर्म होगा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कोई बहुत बढ़िया बंगला बना लिया तो उसे स्वर्ग थोड़ा होगा, इम्पाला खरीद लिया या मर्सिडीज खरीद लिया रोल्स रॉयस खरीद ली तो उसे स्वर्ग थोड़ा होगा, तमाम जेवर बना लिया उसे स्वर्ग थोड़ा होगा, नहीं नहीं नहीं, उससे जितना आपने धर्म किया है उस लक्ष्मी से उसी अंश में वो पवित्रता मानी जाएगी। और अगर पवित्रता आपके पास नहीं है तो गंदे आदमी के पास एक ही बार आदमी जाता है दोबारा नहीं जाता। इस तरीके से लक्ष्मी भी वहीं जाती है जहां उसका सदुपयोग किया जाए, धर्म में खर्चा किया जाए, अच्छे काम के लिए खर्चा किया जाए, तो समझती है ये मनुष्य अच्छा है और हमको अच्छी जगह बैठाएगा, अच्छी जगह देगा और हमारा सही सदुपयोग करेगा। तो ये सदवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक आदमी सोचता है कि बचा के रखो बचा के रखो, बचा के रखते रखते मर जाता है, बैंक वाले सारे पैसे ले लेते हैं, दान का कोई फल नहीं।
अच्छा चलो हम उनसे ले लें। हाँ राव जी भाई।
अच्छा।
हाँ स्वामी जी यहाँ है।
बड़ा सुंदर वृतांत चल रही है स्वामी जी। नमस्कार।
हाँ नमस्कार।
मैं राव जी हूँ। मेरे ख्याल से मैं लंबा समय आपसे मिला था।
अरे क्या बात है, आपने तो सारे घाव हरे कर दिए मेरे। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे उधर लंबा सा की।
अच्छा।
हाँ, वहाँ से तो मैं बुआ तक गया सब देख के आया। हाँ हाँ, तो लंबा सा तो बहुत भक्ति भाव का द्वीप है
जी।
जितनी बार हमने वहाँ कार्यक्रम दिया इतने लोग आए कि इधर के द्वीप में इतने लोग कभी भी किसी सत्संग में नहीं आए। हाँ हाँ,
मैं भाग्य पाई सत्संग का ना।
अरे क्या बात है। हाँ, भाग्यशाली को सत्संग मिलता है इसमें थोड़ा क्या।
हाँ।
और आपने तो मानस की चौपाइयों को भी दोहरा दिया।
तो एक बात मेरे समझ में आई है और आपका जितने भी विचार मैंने सुनते चला जा रहा हूँ, एक एक कड़ी को अनुभव करते जा रहा हूँ
जी। हाँ,
ये बड़ा सराहनीय है। और जब तक आपने कहा